गोलोक एक्सप्रेस के स्पिरिचुअल गपशप पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विधि थ्रू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है हे प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हर घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री राधा कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी का आज के भगवद गीता सार रूप में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम 8 अप्रैल से भगवद गीता सरल सिंप्लीफाइड सार रूप कर रहे हैं। बहुत सारे सीनियर डिवोटीज ने हमें सबसे पहले गोलोक एक्सप्रेस के बारे में बताया, उसके संगठन के बारे में बताया। फिर उसके बाद हमने बहुत सारी ज्यादा मिसकंसेप्शन उसके बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि जो मिथ है संसार में वो हमें अंधकार का काम करते हैं, भक्ति से भटकाने का काम करते हैं। यदि हमारे मिसकंसेप्शन क्लियर होंगे तो भक्ति का रास्ता हमारे लिए जो इतना कठिन बन जाता है, क्योंकि हम ओल्ड वन आउट एक टेंडेंसी में चलते हैं। मैक्सिमम लोग संसार में भक्ति के विरुद्ध माने जाते हैं, देखे जाते हैं, तो हमारे उस रास्ते में आगे प्रयत्न करने के लिए आसानी होती है। तो मैं उन सभी डिवोटीज का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से मिसकंसेप्शंस को हमारे सामने रखा। और आज भी हम एक बहुत सुंदर मिसकंसेप्शन जो हमें जनरली सुनने को मिलती है और उसका बहुत ज्यादा डिवोटीज जो है वो फेस करते हैं कि अगर तुम्हारा व्यवहार ही उत्तम नहीं है तो भक्ति करने का क्या फायदा है। तो जो भी श्रोतागण इसको सुन रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी और उनका आभार प्रकट करना चाहूंगी कि वो हमें YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा जो निखिल जी के माध्यम से उन्होंने इसके ऊपर टिप्पणी की है उसको पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नित्यकज के पास। हरी बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आज का मिथक है, जब तुम्हारा व्यवहार ही नहीं बदलता तो ऐसी भक्ति का क्या फायदा। लेकिन फ्रेंड्स, सत्य ये है कि भक्ति मार्ग पर चलने से बदलाव तो अवश्य ही आते हैं। निंदक स्वभाव होने के कारण अक्सर लोग भक्तों को ये व्यंग कसते हैं। हरी हरी बोल। जब तुम्हारा व्यवहार ही नहीं बदलता तो ऐसी भक्ति का क्या फायदा। जब भी कोई भक्ति मार्ग को अपनाता है तब उसे अपने आसपास के लोगों से यह व्यंग अक्सर सुनने को मिलता है कि तुम्हारा व्यवहार तो बदला ही नहीं, तो फिर तुम्हारा भक्ति करने का क्या फायदा। ऐसा सुन नव साधक निराश हो जाते हैं और कई बार तो भक्ति मार्ग ही छोड़ देते हैं। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि भक्ति मार्ग को अपनाते ही कोई तुरंत महात्मा बन जाना चाहिए और फिर उससे कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। परंतु सच तो ये है कि जैसे बच्चे को स्कूल में दाखिला लेते ही नौकरी नहीं मिल जाती और नौकरी पाने के लिए उसे कई साल परिश्रम करना होता है, वह धैर्य भी रखना पड़ता है, वैसे ही भक्ति मार्ग में भी तुरंत 100% बदलाव नहीं आ जाते। यहाँ भी परिश्रम करना पड़ता है और धैर्य भी रखना होता है। भगवत कृपा से समय के साथ प्रतिशत में हमारे अंदर की बुराइयां घटती हैं और अच्छाइयां बढ़ने लगती हैं। जैसे एक बच्चे के किसी परीक्षा में अंक कम आ जाएं, तो हम उसे स्कूल छोड़ने के लिए नहीं कहते, बल्कि उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वे और मेहनत करें। वैसे ही भक्ति मार्ग में भी साधक से गलतियां हो सकती हैं। उसे ये कहना कि तुम ये मार्ग ही छोड़ दो, ये केवल अज्ञानता है और कुछ नहीं। नव साधक को भी ये समझना चाहिए कि आमतौर पर समाज में तामसिक गुण की प्रधानता होने से लोग दूसरों की कमियां देखते हैं और नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं। साधक को याद रखना चाहिए कि भगवान से जुड़कर सकारात्मक बदलाव अवश्य ही आ रहे होते हैं और आत्म सुधार का आंकलन उसे स्वयं व अपने आध्यात्मिक गुरु की मदद से करना चाहिए। उसे ये व्यंग आदि पर ध्यान ना देकर प्रभु भक्ति में अग्रसर होना चाहिए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल।
हरी हरी बोल। थैंक यू नैतिका जी, बहुत सुंदर आपने इस टिप्पणी को बहुत सुंदर तरीके से रीड आउट किया। तो सबसे पहले इसमें दो कीवर्ड्स है, अगर तुम्हारा व्यवहार उत्तम नहीं है तो भक्ति करने का क्या फायदा। तो इसमें दो कीवर्ड्स है, वन इज भक्ति एंड द सेकंड वन इज व्यवहार। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भक्ति क्या है। भक्ति है भगवान के लिए रति, भगवान के लिए आसक्ति, भगवान के लिए प्रेम आसक्ति। जनरली जो संसार में हमारी होती है वो संसार के लिए रति होती है। क्यों हम इस संसार में आए? क्योंकि संसार के लिए रति है, भगवान के लिए रति नहीं है। तो भगवान की रति इन द सेंस प्रेम, ठीक है ना? तो जो भगवान के लिए रति है, भगवान के लिए प्रेम है, वो है भक्ति। तो भक्ति जब हमारी, ऐसा तो नहीं है कि आपने, आप कैसी भक्ति में कैसे रुचि आती है, आप कहीं सत्संग में गए, आपने किसी को सुना, आपको बहुत अच्छा लगा, मंदिर में गए, कोई वाइब्रेशंस बहुत अच्छी लगी, तो ऐसा नहीं। आप उस क्षण में भक्ति करते हो तो फिर आपको लगता है कि हाँ मुझे मजा आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पहले दिन व्यक्ति गया और उसको भगवत प्राप्ति हो गई, नहीं ना, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। धीरे 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 करके व्यक्ति की जो आसक्ति है भगवान के लिए बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और जब वो भगवान के लिए बढ़ती जाती है तो उसको भगवान में, जिसको कहते हैं लगन लगना या भगवान के ये प्रेम उमड़ना, और ये धीरे 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 ग्रेजुअली बढ़ता है। द सेकेंड वर्ड इज व्यवहार। हमारा व्यवहार जो होता है, व्यवहार होता है बाहरी बाहरी। अब बाहरी किसी के साथ आदान प्रदान कैसे कर रहे हो, कैसे बातचीत कर रहे हो, कैसे वाइब्रेशंस थ्रो कर रहे हो, तो दुनिया असेस करती है आपके बाहरी बिहेवियर से। तो आपको क्या ये चीज लगती है कि भगवान के लिए आपको मंदिर में कुछ क्षण आपको आनंद आया और आपको लगा कि हाँ मुझे भक्ति करने में बहुत रुचि आ रही है, और आप मंदिर जा रहे हो और आप वापिस आके तो वही दुनियादारी है, तो हमारे अंदर इतना बदलाव नहीं आया। लेकिन ये अपने आप से एक्सपेक्ट कर लेना कि मेरा व्यवहार जो है वो बिल्कुल ही पॉजिटिव हो जाए, क्या ये सही है? व्यवहार जो है आपका इंटरनली, आपको जो शांति मिलती है वो सामने वाला तो नहीं एनालाइज कर सकता। तो व्यवहार में भी हमारे अंदर से कैसी चीजें चल रही हैं वो मैटर करता है, जिसको हमने आगे चलकर हम पढ़ेंगे अंदरूनी कुरुक्षेत्र। हमारे अंदर कौरवी क्वालिटीज भी है और पांडवी क्वालिटीज भी है। बाहरी ओर से कोई कौरव और कोई पांडव नहीं है कलयुग में, लेकिन अंदर के तौर पे कौरव भी है, पांडव भी है। जैसे सत्ययुग में हम जानते हैं, सत्ययुग में क्या होता था कि कौरव, कौरव के जो बुरे लोग होते थे उनके प्लैनेट्स अलग अलग होते थे, जो अच्छे जो दैत्य थे उनके प्लैनेट्स अलग है, देवताओं के प्लैनेट्स अलग है। फिर त्रेता युग आया, सृष्टि पे ही रावण भी हुआ और राम भी हुए। और फिर जब द्वापर युग आया, एक ही घर में राम ने भी एक ही घर में जो जो थे वो पांडवों ने भी जन्म लिया और कौरवों ने भी जन्म लिया। अब ये कलयुग है, कलयुग में कहीं बाहर नहीं है, कलयुग में हमारे अंदर ही कौरव है और हमारे अंदर ही पांडव है, हमारे अंदर ही ये द्वंद्व चल रहा है। कभी हमारे अंदर कौरव बहुत हावी हो जाते हैं, कभी हमारे अंदर पांडव बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो पांडव जब अच्छे होते हैं उसमें आता है काइंडनेस, कंपैशन, दूसरे के लिए सोचना, आपके अंदर शांति रहना, सद्भावना रहनी, प्रेम रहना, दूसरों को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, आप काम कर रहे हो, तो ये बेसिकली आती है पांडवी क्वालिटीज। सेकंड कौरवी क्वालिटीज। कौरवी क्वालिटीज क्या है? कौरवी क्वालिटीज है जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे अंदर ये भरा पड़ा है, क्योंकि हमारे अंदर जो है नेगेटिव क्वालिटीज है और आज की डेट में भक्ति में ज्यादा रुचि लेते नहीं है, तो हमारा जो व्यवहार होता है, डीलिंग होती है, वो ज्यादा उन लोगों के साथ होती है जो खुद ही नेगेटिव होते हैं। आपको बहुत कम लोग हैं जो पॉजिटिव और पॉजिटिव एसोसिएशन में मिलते हैं, तो इसीलिए क्रिटिसिज्म तो बहुत आसान है कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो भक्ति करते हो फिर भी, लेकिन फिर भी तुम्हारा व्यवहार जो है अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कामना की ओर। लेकिन जब आप जब मंदिर जा रहे हो, आप जब गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से भी नए नए जुड़े हो, भगवद गीता का अध्ययन करना शुरू हुए, तो आपको शांति मिल रही है, आपको शांति मिल रही है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आपको शांति मिलनी शुरू हुई और आपको लगा कि हाँ इसमें बहुत मजा है, तो आपने क्या करा, आप रेगुलर सत्संग सुनना शुरू हुए। एक हफ्ता, दो हफ्ता, बीच में ऐसा हो गया कि आपने कोई कामना करी, क्योंकि कामनाएं खत्म थोड़ी ना हो जानी है, ऐसा तो नहीं है कि कामना खत्म हो जाएगी, कामना विहीन हो जाएगी, और भगवदगीता में ऐसा लिखा है कि कामना खत्म नहीं होती, कामना चैनलाइज हो जाती है, क्योंकि इच्छा शक्ति से तो व्यक्ति जीवित रह रहा है। तो कामना क्या हो जाती है, धीरे 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 भगवान में जो है वो वास करनी शुरू हो जाती है, भगवान के रिलेटेड कामनाएं हमारी होती है। संसार की कामनाएं जो है वो व्यक्ति को दुख पहुंचाती है, भगवत कामनाएं भक्ति को शांति और आनंद की प्राप्ति करवाती है। तो जब हम नए नए आते हैं, संसार की इच्छाएं खत्म नहीं होती है, तो हमारी घूमने की भी इच्छा रहती है, जंग की भी इच्छा रहती है, तो बहुत सारी कामनाएं होती है। जैसे अगर हम अपनी गोलोक एक्सप्रेस में डिवोटीज नोटिस करें, तो जो या फिर जो नए नए डिवोटीज जो जुड़े हैं यूट्यूब में, वो भी एनालाइज कर सकते हैं कि पहले अगर आपको बहुत ज्यादा होता था कि आपने फोन पे बात करनी है, ये कामना रहती थी, मैंने घर पे बात करनी है, अपने रिश्तेदारों से डील करना है, किसी को क्लब में जाना है, तो अब वो हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, अब वैसी इच्छा नहीं रहती। अब क्या होता है, वृंदावन जाना है, अब जो बहुत सालों से डिवोटीज जुड़े हैं वो ऐसा करेंगे, वृंदावन जाना है, अपनी थोड़ी चैट कर लेते हैं, अच्छा लगता है, भगवान के साथ कनेक्टेड होके अच्छा लगता है। तो ऐसा तो नहीं है ये ग्रेजुअल एकदम से हो गया, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। पहले हम सिर्फ सत्संग में भक्ति करते थे तो ऐसा लगता था आनंद हो रहा है, लेकिन कामनाएं रहती थी, होता था घूमने जाना है, चलो चिल आउट करने चलते हैं। अब क्या लगता है कि थोड़ी देर घर पे भी बैठते हैं, ऐसे मनी वेस्ट है, क्या फायदा है, सोच बिल्कुल बदल जाती है, धीरे धीरे करके सोच बिल्कुल बदल जाती है, लेकिन समय लगता है। अगर आप एक बच्चे को, अभी वो स्कूल में गया है, अभी पढ़ा है ना हमने नितिका जी के माध्यम से, कि अगर एक बच्चा स्कूल ही गया है, उसको आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं करवा सकते ना कि वो जो है वो पैसे कमाना शुरू कर दे। संसारी दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें क्लैरिटी होती है कि नहीं, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बच्चा कमाना शुरू कर दे। क्यों ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो कमाना शुरू कर दे, क्या रीजन है? क्योंकि हमें समझ है कि अभी उसकी योग्यता नहीं है। लेकिन संसार, जब अध्यात्म की बात आती है, तब हम योग्यता नहीं, तब हम प्रमाण दे देते हैं कि नहीं, इसको तो बिल्कुल ही नहीं, इसकी तो अभी भी है कि मैं ये चीज ले लूं, शॉपिंग करती रहती है या ये करती रहती है। तो अभी सारी जो है वो चैनलाइज नहीं हुई। अब मैंने भी ये एक्सपीरियंस, जो जितनी भी मेरी जर्नी रही है गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर 10 ईयर्स, तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि पहले होता था कि हम अपने बच्चों को बेस्ट पेरेंटिंग दें, बच्चे हमारे हिसाब से चले, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल खत्म हो गई है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है बिहेवियर में भगवान की कृपा से, और परिवर्तन हुआ है। तो होता है, लेकिन स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। बहुत ज्यादा जन्मों की आसक्ति है ना, बहुत ज्यादा जन्मों के हमारे अंदर विकार है, तो एकदम से खत्म नहीं होते। सेकेंड, क्रोध। कामना जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है, ये हमने पढ़ेंगे आगे जो भगवद गीता का कोर्स करेंगे। जब बहुत ज्यादा कामनाएं बढ़ जाती है, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा हम पकड़ लेते हैं, और वो जब हमारी पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे एक बच्चा जो है, उसको हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले, वो नहीं चल रहा तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो लेकिन जब आप भक्ति में इनकल्केट करते हो, भक्ति करते हो और भक्ति में को स्मरण, भक्ति में जो सत्संग का श्रवण करते हो, अपनी चैंटिंग की प्रैक्टिसेस करते हो, सेवा करते हो, तो आपके अंदर जो पकड़ी हुई चीज, एक्चुअली क्रोध ने हमें नहीं पकड़ा, हमने क्रोध को पकड़ा हुआ, क्रोध ने हमें नहीं पकड़ा हुआ, तो फिर व्यक्ति जो है ना चीजों को छोड़ना शुरू करता है कि आई एम नॉट अ कंट्रोलर। कंट्रोलर कौन है? वो हम क्या है, हम क्या है, हम है दास, हम है, हम भगवान को सर्विस दे सकते हैं, जो भी भगवान ने हमारे लिए किया है वो परफेक्ट है, जैसे भी रिलेशंस वाला है वो परफेक्ट है, उसको आप छोड़ना शुरू करते हो, और जब छोड़ना शुरू करते हो फिर जीवन का आनंद आता है, वो धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। पहले क्रोध क्या होता है, पहले क्रोध हमेशा, भैया के आपने मुख से सुना होगा मुख से, कि क्रोध क्या है, इनिशियली भक्ति में पत्थर की लकीर, जो व्यक्ति संसार में अभी भक्ति से नहीं जुड़ा हुआ, अगर आप उसके लिए कभी आपकी उसकी टकराव हो गई तो वो पत्थर की लकीर, आप कहोगे मैं उससे बात ही नहीं करूंगा, मेरे को नफरत है उससे। लेकिन जब आप भक्ति में आते जाते हो तो आपके अंदर क्षमा भाव आता है, आप कहते हो नहीं जाने दो, वो ये उसके, वो ये मेरा उसका लेना देना था, कर्मों का कॉन्सेप्ट समझता है, गुणों का कॉन्सेप्ट समझता है, तो बुद्धि जो है, बुद्धि में दिव्यता आती है, तो फिर व्यक्ति जो है वो छोड़ने का भाव रखता है, नहीं मेरे को ग्रजित नहीं बनाने हैं, मेरी भक्ति के लिए जो है वो अड़चन है। लेकिन ये इमीडिएटली नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ये बार बार मैं बोल रही हूँ, इमीडिएटली नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ये गलती है, ये अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जब हम दूसरों के नजरिए से चीजों को देखते हैं ना, तो हम बड़े जल्दी डाउन हो जाते हैं कि हमें, और अपने आप से भी क्रोध आ गया, मैं तो भक्ति करती हूँ, मुझे क्यों क्रोध आ गया। पहले अपने आप को समझना है, अपने अंदरूनी को समझना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आप में थोड़ा सा भी क्रोध कम हुआ है तो बड़ी अचीवमेंट है, एटलीस्ट आप अपने क्रोध को देख पा रहे हो। पहले तो आपको लगता था कि दूसरे के कारण मुझे क्रोध आ रहा है, एटलीस्ट अभी भक्ति में शुरू हुए तो एटलीस्ट ये समझना शुरू हुए हो ना कि मुझे क्रोध आ रहा है और नहीं करना चाहिए, तो ये भी क्या प्रोग्रेस नहीं है, ये भी प्रोग्रेस है। और जब बढ़ते जाते हैं हम प्रोग्रेस में तो ये लगता है कि क्रोध ही हमें खा रहा है, फिर व्यक्ति जो है वो भगवत प्रैक्टिसेस ज्यादा करता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है। तो हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, खुद को बदलना है, दूसरों को नहीं बदलना है। सेल्फ पुस्तक की बात की है भक्ति में, दूसरों की बात नहीं करिए, तो जब हमारे अंदर ये बदलाव आता है तो अच्छा लगता है। ये बार बार ये चीज क्यों बोली गई है कि पहले दूसरों की नजर से बाद में देखना, पहले अपनी नजर से देखो कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई है। क्यों? दूसरे को हम राइट नहीं दे सकते कि वो आपकी भक्ति के गिरने का कारण बन जाए, अगर कोई भक्ति में गिर रहा है तो वो हम ही कारण है। तीसरा, काम क्रोध लोभ ग्रीड, पहले बहुत ज्यादा होती थी, पैसे की ग्रीड, चीजों की ग्रीड और हर चीज की ग्रीड, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे उसमें भी फर्क पड़ता है। ठीक है, काम क्रोध लोभ मोह पहले बहुत ज्यादा आता था, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा ये, और जितने भी आपको लोकियंस हैं जो बहुत सालों से जुड़े हुए हैं वो भी देख रहे होंगे, उनको लगता है कि पूरी सृष्टि ही जो है ना वो वासुदेव कुटुंबकम है, तो बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, दूसरे के, बंदा पहले अपने सिर्फ गृहस्थी में फंसा होता है, लेकिन जो भक्त होता है ना वो सबका कल्याण और सबके बारे में सोचता है। क्या हम इस लेवल तक पहुंचे हैं कि जब हम सबके बारे में सोचेंगे? ठीक है, तो अभी धीरे 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 ऐसा आएगा, नहीं हमें भक्ति की वार्तालाप करते हुए अच्छा लगता है, भक्तों से बात करते हुए अच्छा लगता है, तो अभी दूसरों के कल्याण के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये भी स्टेजेस है ना, धीरे 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 करके आना। फिर उसके बाद है काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, ये सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये भक्ति में आके भी ये पूरा नहीं जाता, बहुत धीरे धीरे शरीर का भी अहंकार है कि हम, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं हम आत्मा है, लेकिन आत्मा को रियलाइज नहीं करते हैं, तो अहंकार जो है व्यक्ति में कहीं ना कहीं है और बहुत जल्दी से पकड़ लेता है, ये हमें भी नहीं पता लगता। ये देखिए ना, रावण कितना विद्वान था, अहंकार तो उसको भी पकड़ लिया, तो विद्वानियों को भी अहंकार पकड़ लेता है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत विद्वान है और उसको अहंकार नहीं पकड़ेगा, विद्वानों को भी, अगर स्थू अगर बॉडीली लेवल पे अहंकार नहीं है तो अध्यात्म का भी अहंकार आ सकता है। तो अहंकार व्यक्ति में छूटना बहुत बहुत प्रैक्टिस की बात है, और इनिशियली तौर पे तो व्यक्ति को इतना अहंकार होता है, उसको रिश्तेदारों का अहंकार होता है, उसको अपना अहंकार बड़ा होता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, अपने अंदर इक्वालिटीज देखता रहता है, जिसको अहम बहुत बहुत बोलते हैं ना, कि व्यक्ति में अहम बहुत है, व्यक्ति में ईगो बहुत है, तो वो जो निकलते निकलते समय लगता है, कोई आपको कमेंट कर दे तू तो बड़ी भक्तन बनी फिरती है और ईगो तेरे में पूरी भरी हुई है, बात तो सुन नहीं सकती, बदला लेने की पूरी भावना है। ठीक है, ये हम सबको कमेंट्स पड़े हुए हैं, ये हमारी जर्नी का पार्ट है। ठीक है, लेकिन धीरे 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 जब आपके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आते हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये जर्नी का पार्ट है, हम ये नहीं कह सकते कि ये चीजें आएंगी नहीं, ये लास्ट वाला मिसकंसेप्शन जरूर है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है और हम इसको बहुत ही ज्यादा जीते हैं इस मिसकंसेप्शन को। तो लास्ट वाला है मत्सर, मत्सर मत्सर मतलब जेलसी, कि पहले हमें ये होता था किसी के पास बहुत ज्यादा बड़ा कुछ है, अब हमें ये लगता है कि नहीं कंटेंट है हम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी जो चीजें हैं वो और है। ये सारी चीजें जो है ये हमारे इम्प्रूवमेंट का कारण बनती है, लेकिन ग्रेजुअल प्रोसेस है। पहले आपको ये लगेगा कि ऐसी ये तो बहुत ज्यादा गंदगी है मेरे अंदर, बहुत ज्यादा गंदगी है, लेकिन वो गंदगी आप कहोगे कि मेरे अंदर क्रोध भी आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही है, ये साफ ही नहीं हो रही। तो ये गंदगी पता है किस तरीके की है, मान लीजिए कि बहुत गंदा एक बर्तन है, बर्तन आपने पकड़ा है और उस जब काला काला हो जाता है ना, कभी जल जाता है, काला काला हो जाता है, तो आप ना उसको स्टील वूल की हेल्प से आप उसको ना रगड़ते हो, जब रगड़ते हो तो ऐसा लगता है कि वो बर्तन के साथ मिक्स है, लेकिन जब धोते हो तब उसका पता लगता है ना। तो जो मिक्स है वो है जब हम भक्ति करते हैं, और धोते हैं जब हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, भगवान के साथ बहुत ज्यादा लगन हो जाती है, तो भगवान उस बर्तन को धोते हैं, फिर वो चमकता हुआ निकलता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा रगड़ना पड़ता है ना, जल जाए कितना रगड़ना पड़ता है, तो ये जल जाए फिर थोड़ा रगड़ना पड़ता है, मतलब थोड़ी देर लगती है इसको, लेकिन हमारे जन्मों जन्मों के लाखों करोड़ों जन्मों के विकार है, इसको तो बहुत ज्यादा रगड़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा, इट विल टेक टाइम। तो पेशेंस बहुत जरूरी है भक्ति में, अदरवाइज हम टूट जाएंगे। तो भक्ति में कुछ स्टेप्स है वो हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, प्लीज स्लाइड शो करें, सबसे पहला है क्रिटिसिज्म, फिर है एक्सेप्टेंस, फिर है रिस्पेक्ट, और फिर है फॉलो। तो सबसे पहला पार्ट है वो है क्रिटिसिज्म। हमें भक्ति में क्रिटिसिज्म, जो हमने ये सारी चीजें सुनी है वो हमें सुनने को मिलेगा, वो क्रिटिसिज्म है, ये पार्ट है भक्ति का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर क्रिटिसिज्म में ही व्यक्ति फंस गया तो वो आगे की गांठों को कैसे खोल पाएगा। क्रिटिसिज्म एक सबसे बड़ी और बाहरी गांठ है, ठीक है, जो हमें बाहर से मिलता है, तो अगर हम उसको ही नहीं डील कर पाए तो हम अपने अंदर का क्या सवारेंगे, क्या सवारेंगे। तो दूसरों से अगर कमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, उसको बहुत अच्छे से डील करना उसको, अगर ये भक्ति का पाठ है। इसको आप ऐसा नहीं है कि इसको आप सीधे ही लांग जाओगे और आपको एक्सेप्टेंस मिलनी हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। हमें खुद ही ये क्रिटिसिज्म छेड़ने पड़े हैं, मतलब मैंने जब भक्ति करी थी तो मैं होंगी कोई 26-25, मेरी नई नई मैरिज हुई थी, तो बहुत सारा कमेंट्स मिलते थे कि अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, डिप्रेशन में तो नहीं चली गई, इस उम्र में जाना कोई सही बात है, तो बहुत सारे कमेंट। और ऐसा नहीं है मुझे ही मिले हैं, कोई मैं यूनिक नहीं हूँ, हम सबको मिले हैं। डिवोटीज बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, किसी के फैमिली मेंबर्स उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं, और किसी को बड़े कष्टदायक। अब देखिए ना, जो विभीषण थे उसको क्या क्रिटिसिज्म भी नहीं मिला, तो क्रिटिसिज्म मिला क्या उसको, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, हुई ना, तो वो तो उसके तो परिवार में कितना क्रिटिसिज्म था, फिर भी उन्होंने भक्ति की। तो ये कलयुग है, कलयुग में तो आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बड़े आराम से आप भक्ति कर लोगे। और कभी कभी ये हो जाता है कि हम तो बड़े अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं फिर भी हमें क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो क्रिटिसिज्म इज अ पार्ट ऑफ डिवोशन, अगर आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते तो हम भक्ति के योग्य ही नहीं है। तो क्रिटिसिज्म इज द फर्स्ट पार्ट, अगर आप इस पार्ट को क्रॉस कर लेते हो तो फिर दूसरे जो है आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ अब ये हमें तो लगा था ये 4 दिन करके छोड़ देगा, लेकिन ये तो लगा हुआ है, चलो ठीक है लगने दो, अपनी माला कर रहा है, क्या लेना देना है हमें, हमने तो समझा समझा के थक गए, क्योंकि अभी अंदर के चेंज आ रहे हैं, आपको अंदर से शांति मिल रही है, अंदर से खुशी मिल रही है, बाहरी परिवर्तन इतना नहीं आया है, लेकिन जब आपके अंदर ऑरा आपका बहुत पॉजिटिव हो जाता है, जो आपके पास बैठता है आप तो बहुत अच्छे हो, आप क्या करते हो, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, आप तो कोई किसी की निंदा किसी की चुगली नहीं करते हो, आप क्या करते हो, तब फिर लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू होते हैं, क्योंकि आपने दुनिया से हटके कुछ कर रहे हो। कभी कभी तो बहुत कृपा है उनके ऊपर जिनके घर वाले उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली मेंबर्स वो चीज नहीं देख पाते, बाहर वाले पहले देख लेते हैं, तो फिर उनको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू होती है, सारे उनको रिस्पेक्ट देना शुरू हो जाते हैं, ये बहुत सम्माननीय है, ये बहुत ही अच्छी बात करते हैं, ये अच्छे तरीके से रहते हैं, किसी के साथ इनकी लड़ाई झगड़े नहीं होते, कोई भी चीज हो पॉजिटिवली हैंडल कर लेते हैं, तो रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है। और मैक्सिमम डिवोटीज को तो घर पे भी रिस्पेक्ट मिलती है कि भाई ये तो संत बन गया, ठीक है। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फॉलो। फॉलो भी लोग करते हैं लेकिन उसके लिए बहुत परिश्रम, बहुत डिटर्मिनेशन, बहुत ही ज्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए होती है कि जब व्यक्ति जो है इस रास्ते में लगता है, अगर कोई व्यक्ति इस रास्ते में लगा है और वो कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहा है तो उसको बाद में फॉलो भी किया जाता है। और जो भी जीव फॉलो करते हैं फिर आज उसी से क्या बना है, हमारा गोलोक एक्सप्रेस बना है जिसका मोटो है घर घर मंदिर हर मन मंदिर। ये कैसे बना है, ये इसी स्टेप्स के, जो भैया ने ये स्टेप्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं इसी की बदौलत बना है। और पहले ही समझाया कि ये होगा जब आपने, जब दुख कब होता है, जब आपने ये सोच लिया कि मेरे साथ नहीं होना चाहिए तो दुख है, तो जब आपने ये सोच लिया कि तो भक्ति का पार्ट है तो मैं भक्त बन गया तो खुश हो जाओगे, कोई नहीं अभी मेरे को बोल रहा है, लेकिन एक समय आएगा, एक समय आएगा जब मैं अपने अंदर परिवर्तन लेके आऊंगा और दूसरों को, दूसरे उससे अट्रैक्ट होंगे, मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी बनूंगा जिससे मेरे अंदर भी ऊर्जा आएगी, शांति आएगी, प्रेम आएगी और अट्रैक्शन आएगी, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ये प्रैक्टिस से होता है, लेकिन प्रैक्टिस हमने क्या करनी है, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, इन ये सारे टॉपिक्स हम करेंगे आगे कवर, और इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जिसने सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार का आश्रय ले लिया उसके जीवन से सब विकार जो है वो आउट हो जाते हैं धीरे धीरे। अब हम कुछ श्लोकों का अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। प्लीज हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। अध्याय 9 परम गोपनीय ज्ञान श्लोक 30। यदि कोई अत्यंत दुराचारी मनुष्य भी अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए क्योंकि उसने बहुत अच्छा निश्चय कर लिया है। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। तो ये भगवान हमें स्वयं एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, स्वयं भगवान हमें एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। क्यों एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि कोई अगर दुराचारी भी मनुष्य है, जिस दुराचारी मनुष्य जिसने बहुत ज्यादा बुरे कर्म किए, बहुत ज्यादा, अगर कोई बहुत ज्यादा भी बुरे कर्म कर रहा है तो उसको भी तुम्हें साधु ही मानना चाहिए क्योंकि उसने डिटर्मिनेशन सही रास्ते में किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर इमिडिएटली बदलाव आ जाएंगे। बहुत ज्यादा ऐसे साधु संत हुए हैं जिनकी बाहरी तौर से बहुत आसक्ति रही है चीजों की और या फिर अपने क्रोध की और बहुत ज्यादा उनके जो व्यवहार में बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि ये तो घृणित कार्य है, बुरा कार्य है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर वो सुलझ गया है और उसने डिटर्मिनेशन पक्का कर लिया है उसको तुम साधु मानो क्योंकि उसने अच्छा निश्चय किया है। पहले तो हमने भगवान ने एक्सेप्टेंस दे दी कि अच्छा निश्चय है, कोई बुरा ही निश्चय नहीं है। दूसरी चीज कि अगर कोई गलत कार्य करता है तो हम परफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। अब एक जैसे एक बच्चा है वो बीच में पॉटी सुसु कर देता है तो माँ क्या करती है, उसको धुलाती है फिर उसको अपनी जगह पर बिठा देती है। हम भी तो ऐसे ही है, गंदगी से भरे हुए हैं, बार बार गंदगी फैला रहे हैं, भगवान क्या करते हैं उसको साफ करते हैं, बार बार गंदगी फैला रहे हैं फिर भगवान इसको साफ करते हैं। लेकिन साफ करने में एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस से हम निकलते हैं, ठीक है। अब ये क्यों होता है कि व्यक्ति का दुराचारी व्यवहार क्यों होता है, अब हम पढ़ते हैं 14.5 श्लोक से। हरी बोल।
हरी हरी बोल। चैप्टर 14 श्लोक नंबर 5। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों से युक्त है। हे महाभाव, ये 3 गुण अविनाशी आत्मा को इस देह में बांध लेते हैं। हरी हरी बोल।
तो जो भी इस संसार में जिसने भी ये देह प्राप्त की है, वैसे तो हम आत्मा है लेकिन हम इस शरीर, ये हमने धारण किया है ना, तो जिसने भी इस शरीर को धारण किया है वो तीनों गुणों के अंतर्गत आता है, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर ये गुण एक्ट नहीं करते हैं। हमारे पुराने पुराने जन्मों के संस्कार है, जिस तरीके से हमारे संस्कार रहे हैं, जिस तरीके से हमारी रुचियां रही हैं, उस तरीके से हमारे गुण जो है वो एक्ट करते हैं। छोटे बच्चे के ऊपर भी, किसी भी जीव के ऊपर संसार में 3 गुण एक्ट करते हैं। सात्विक गुण वो होता है जो हमें बहुत शांत, बहुत प्रेम वाला, शांति उसको प्रिय है, उसको वो है सात्विक। राजसिक भागम भाव, परफेक्शन, रजस तमस, खुद भी नुकसान वाली चीजें करनी, चीजें तोड़नी। कई बच्चे होते हैं फटाफट तोड़ देते हैं, दूसरों के भी नुकसान कर देते हैं। तो ये शुरू से ही बच्चे में तो कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं है लेकिन पिछले जन्मों के गुण है जो एक्ट करते हैं। तो ये जो है जब हमारे ऊपर गुण एक्ट करते हैं हमसे गलत कर्म हो जाते हैं। अब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं गुणातीत हूं। गुणातीत क्या है, सिर्फ भगवान। अगर हम गुणातीत की शरण में जाएं, गुणातीत मतलब जो गुणों से परे हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण से परे हैं, वो दिव्य है, वो भगवान है। और भगवान का दिव्य, दिव्य भगवान का जैसा जैसा हम चिंतन करते जाएंगे हमारे अंदर उतनी उतनी क्लींजिंग होती जाएगी। इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं सुखदेव गोस्वामी की। सुखदेव गोस्वामी आपने प्रीति जी के श्रीमुख से सुना होगा, सुखदेव गोस्वामी की हमने कथा भी सुन रहे हैं आजकल, कि सुखदेव गोस्वामी जो थे वो माँ के घर में 12 साल रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर के मुख से पहले ही श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर लिया था और वो अपनी माँ के गर्भ से नहीं निकल रहे थे। और माँ के गर्भ से क्यों नहीं निकल रहे थे? क्योंकि उन्होंने ये एक्सपीरियंस कर लिया कि जब मैं इस सृष्टि में आऊंगा मुझे तीनों गुण घेर लेंगे, लेकिन जब तक भगवान ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया वो नहीं आए। और भगवान ने आशीर्वाद दिया जब वो सृष्टि में आए, वो तीनों गुणों से ऊपर थे, वो दिव्य थे। लेकिन ऐसा जन्म सिर्फ सुखदेव गोस्वामी का ही हो सकता है, हमारा नहीं। ठीक है, हमारा नहीं हुआ, हमारा हम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं लेकिन फिर हम भूल जाते हैं क्योंकि हम भगवान की शरणागति नहीं है। और वो गर्भ से ही भगवान की शरणागति थी और स्वयं भगवान का हाथ था उनके ऊपर। हम भी भगवान का हाथ हमारे ऊपर है लेकिन हम खुद ही छुड़ाकर भागते हैं। ठीक है, तो जितना जितना हम भगवान की शरण में जाएंगे तो हम पहले हम थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं क्षण में ये फील भी करेंगे कि हम जब आप चैंटिंग करते हो या फिर आप ये श्रवण करते हो श्रीमद् भगवद गीता का, आप सारे विचारों से मुक्त होते हो, आप भगवान में बड़ा ही डिवाइन एक कनेक्शन फील करते हो। वो कुछ कुछ क्षण, कुछ 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 क्षण में वो हम फील करते हैं, ठीक है, उस डिविनिटी को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तीनों गुणों के, ये तीनों गुण ही हमें नचाते हैं और हम नाचते रहते हैं और व्यक्ति से गलत कार्य हो जाता है। तो ये बहुत ही डिटेलिंग का ये चैप्टर है, जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़िए प्लीज।
चैप्टर 9 श्लोक नंबर 31। वे तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थाई शांति को प्राप्त होता है। और हे कुंते, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हरी हरि बोल,
हरी बोल। तो पहले हमने समझ लिया कि पहले ये व्यक्ति गलत कार्य करता क्यों है, गलत कार्य होते हैं उससे लेकिन होता क्यों है। फिर वो भगवान कह रहे हैं वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। क्यों धर्मात्मा बन जाता है? फिर उसको समझ आती है कि नहीं, अब मम्मा ने मुझे धुला दिया है, मैं साफ हो गया हूँ, अब मुझे गलत कार्य नहीं करना। क्योंकि उसको कनेक्टेड तो है ना भगवान से, वो भूल जाता है मैं कनेक्टेड हूँ भगवान से, फिर वो गलत कार्य कर देता है। तो फिर क्या है, तो फिर भगवान कहते हैं वो जल्दी ही अपने रास्ते पे आ जाता है। भटका है लेकिन वो रास्ते में आ गया। व्यक्ति से गलतियां हो जाती हैं। अब हम कितनी कितनी कथाएं सुनते हैं श्रीमद् भागवतम में कि गलती हो गई, फिर भगवान जी आए, फिर उन्होंने क्षमा कर दी, है ना। तो फिर भगवान क्या है, वो क्षमा कर देते हैं क्योंकि उसका डिटर्मिनेशन पक्का है। तो उसको भगवान तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि उसको शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। फिर उसके अंदर शांति आ जाती है, भगवान के लिए जुड़ाव आ जाता है। और भगवान एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रही है जो हमें दूसरों की नजर से नहीं देखनी है, जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें अपनी नजर से देखनी है, भगवान की नजर से देखनी है कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। भाई ये संसारी वर्जन नहीं है, ये भगवान का वर्जन है। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। तो अगर भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया है फिर वो भगवान छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हम पकड़ाते हैं तो हम पीछे खींच लेते हैं। एक बच्चा है ना, वो सड़क पे जा रहा होता है, चल रहा होता है, बार बार मम्मा का हाथ छुड़ाता है, फिर मां पकड़ती है। तो यही होता है, हम बार बार छुड़ाते हैं, भगवान हमारा बार बार पकड़ते हैं। तो इस तरीके से चलता है। भगवान कहते हैं पर मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता क्योंकि वो मेरी शरण में आया है। हरि बोल, नेक्स्ट पढ़िए।
श्लोक 34। सदैव मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तन्मयता से आत्मा को मुझ में लगाकर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल,
हरि बोल, हरि बोल। भगवान क्या कह रहे हैं, सदैव मन को मुझ में लगाओ। भगवान ये हमें, भगवान ने अनुमति दी है ना, इस सृष्टि में शरीर क्यों मिला है? शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। तो भगवान के आदेशानुसार चल रहा है कि संसार के आदेशानुसार चल रहा है? जैसे भी चलना पड़े, छिपके चलना पड़े, सामने होके चलना पड़े, लेकिन भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति करो, मुझे मनन करो, मेरे साथ जुड़ो, मुझे नमस्कार करो। ठीक है, और यदि तुम इस रास्ते पे चलते हो तो निश्चय ही तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करोगे। और बहुत बहुत जन्म हो गए कि भगवान को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं लेकिन इस जन्म में किसी की बात सुनकर हम छोड़ेंगे। हम इस जन्म में इस माया के प्रभाव से डर कर छोड़ेंगे नहीं, हम भगवान को कहेंगे कि भगवान आप हमारा हाथ पकड़ो। जैसे रामायण में हम प्रसंग सुनते हैं ना कि भगवान को बोला जाता है कि भगवान आप हमें पकड़िए, कि हम आपको पकड़ेंगे तो हम छोड़ भी सकते हैं। हनुमान जैसा बोलते हैं कि हम आपको पकड़ेंगे, सुग्रीव आपको पकड़ेगा तो वो छोड़ भी सकता है। हनुमान जी कहते हैं ना सुग्रीव के बारे में, आप चलिए सुग्रीव के पास, अगर आपने सुग्रीव का हाथ पकड़ा तो फिर आप छोड़ोगे नहीं। ये हमारे मनुष्य की जो है वो कमी है, हम बहुत जल्दी छोड़ देते हैं भगवान को, क्योंकि माया का प्रभाव बहुत ज्यादा हमें लगता है, कलयुग में बहुत ज्यादा हम पीड़ित हैं। तो हम यही प्रेयर करते हैं कि हम ना किसी की बात को सुने और ना किसी की बातों में आए, और आज ये हमें संकल्प लेना है कि इस क्रिटिसिज्म से डरकर हम कभी भी भगवान का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, कि जिनके लिए आए हैं उन्हीं को छोड़ दे तो हम कहाँ के समझदार हैं। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हमारा व्यवहार ही उत्तम नहीं है तो भक्ति करने का क्या फायदा। अगर हमें अपने व्यवहार को उत्तम बनाना है तो भक्ति को अपने जीवन में उतारना है, ये होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओवर टू शमी जी, हरे कृष्णा।
हरी हरी बोल एवरीवन, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच नताशा जी फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन, बहुत ही आनंद आया आपको सुनकर। और जैसा कि आपने बताया, जो आजकल हमारी सीरीज चल रही है मिसकंसेप्शंस के ऊपर, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो सच में कभी कभी हमें पहले यही लगता था कि हमेशा हमारी कोई प्रशंसा ही करता रहे, तो जब सत्संग के साथ हम जुड़ते हैं तो पता चलता है कि ये द्वंद्वों का संसार है, वैलिटीज का संसार है। भगवान हमें खुद बता रहे हैं कि अगर सर्दी है तो गर्मी है, अगर सुख है तो साथ में दुख है, अगर प्रशंसा है तो साथ में निंदा है, अगर फूल है तो साथ में कांटे भी हैं। अगर हम प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं तो हमें निंदा भी मिलेगी, और स्पेशली जब हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो हमें निंदा मिलती ही मिलती है कि अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा ही नहीं तो भक्ति करने से तुम्हें क्या फायदा। ठीक है, अगर हम एक स्टूडेंट को ये बोले कि तुम्हारी हैंडराइटिंग तो अच्छी नहीं है तो क्या वो स्टूडेंट अपना होमवर्क करना छोड़ देगा। अगर किसी लेडी को ये बोला जाए कि तुम कुकिंग इतनी अच्छी नहीं करती हो तो क्या वो कुकिंग करना छोड़ देगी, ऐसा नहीं होता है। तो सेम चीज जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी होती है। अगर हम अध्यात्म के रास्ते में चल रहे हैं, भक्ति मार्ग पर हम चल रहे हैं, तो हमें निंदा मिलेगी मिलेगी और हमें इसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अगर हमारे अंदर धैर्य नहीं होगा, हमने ये सीखा कि हमारे अंदर धैर्य भी होना चाहिए, है ना, हमारे अंदर डिटर्मिनेशन भी होनी चाहिए और हमारे अंदर एंथुजियाज्म भी होना चाहिए। ये तीन चीजें जो हैं वो भक्ति के लिए बहुत ही कंपलसरी हैं। और जैसा कि हम धैर्य की अगर मैं बात करूं, तो अगर हम एक सीड को मिट्टी में डालते हैं तो अगर हम सोचे कि पूरी फैमिली अगर हम इसको पूरा दिन पानी देते रहें, ये सीड आज ही पनप जाए और आज ही पौधा बन जाए और आज ही पेड़ बन जाए और आज ही इस पे फल लग जाए और आज ही हम इसको खा लें, है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर बीज डाला है, धीरे धीरे वो नर्चर होगा, वो पौधा बनेगा, फिर वो पेड़ बनेगा, फिर वो फलित होगा, तब हम उसको खा पाएंगे। ठीक उसी तरीके से जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं, हमारे अंदर अवगुण होते हैं, हमारे अंदर पूर्व जन्मों के अनर्थ होते हैं, हमारे अंदर कमजोरियां अभाव होते हैं, लेकिन धीरे 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 जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, और वैसे भी देखो कहा गया ना कि भगवान जो है वो पतितों के पावन है, वो पतितों का उद्धार करने वाले हैं, वो पतितों को पावन करने वाले हैं। हम जिस भी तरीके से हम गंदे हैं, हमारे अंदर अनर्थ है, अलग अलग तरीके के विकार हैं, हमारा व्यवहार अगर अच्छा नहीं है, तो भगवान की शरण में जब हम जाएंगे तो भगवान धीरे 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 हमारे अनर्थों को दूर कर देंगे, हमारे विकारों को दूर कर देंगे। अक्सर एक बात हम बचपन से ही सुनते आए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना, तो और ये भी हम कहते हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, और ऐसा नहीं है कि दोनों कानों से सुनो, उस बात को अपने दिल से लगाओ, है ना, और अपना समय व्यर्थ कर दो। तो हमें करना क्या है, एक कान से हमें अपनी निंदा को सुनना है और दूसरे कान से हमें उस निंदा को बाहर निकाल देना है। हमें उन बातों को दिल से नहीं लगाना है और अपने टाइम की हमने वेस्टेज नहीं करनी है। बिकॉज ये बातें जो होती है ना, बेसिकली भक्ति मार्ग में एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती हैं। जब हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी हमारी स्मूथ नहीं चलती है। कब नहीं चलती है, जब स्पीड ब्रेकर जो है वो बड़े बड़े आ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो संशय है, ये जो अलग अलग तरीके के अवरोध है, ये हमारे भक्ति मार्ग में हमारे लिए बाधा बनकर काम करते हैं। तो ठीक वैसे ही अगर हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, अगर गड्ढे आ रहे हैं या किसी भी तरीके की कोई बाधा आ जाती है, तो क्या हम अपनी ट्रेवलिंग को छोड़ देते हैं? हम उस बाधा को पार करते जाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं। अगर हमारा लक्ष्य है कि हमने भक्ति मार्ग पर चलना है, यानी कि डिटर्मिनेशन है, तो फिर हमें ये रास्ता छोड़ना नहीं है। हमें क्या करना है, इन बातों को छोड़कर, है ना, हमें अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना है। जब हम भगवान के साथ जुड़ेंगे, है ना, भगवान जो कि हमें शक्ति देते हैं, हमें उन बातों को सहन करने की शक्ति देंगे जिन बातों से घबरा के हम भक्ति मार्ग को छोड़ने की सोचते हैं। जब भगवान की शरण में हम जाएंगे, भगवान हमें वो बल देंगे, हमें वो क्षमता देंगे। हमारी निंदा भी होगी, है ना, हमारे व्यवहार को लेके, लेकिन हम इस रास्ते को छोड़ेंगे नहीं और हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। और एक बात और भी है कि ये हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं और वही जो है वो कैरी फॉरवर्ड भी होते हैं। और एक चीज भगवत गीता से मैंने ये भी सीखी कि जितना हम अपने आप को सतोगुण में रखेंगे, यानी कि हमारा उसमें आहार भी आता है, क्योंकि जितना हमारा आहार, यानी कि जो भी हम खाएंगे भगवान को अर्पित करके खाएंगे, अगर हमारा आहार अच्छा होगा तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा, और अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो हमारा संस्कार अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि इस रास्ते को हमें छोड़ना है नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक कांच का टुकड़ा होता है, उसको हम थोड़ी सी चोट देते हैं ना तो वो बड़ी आसानी से टूट जाता है, लेकिन एक पत्थर होता है ना, वो आसानी से टूटता नहीं है। तो हमें कांच के टुकड़े की तरह नहीं, हमें पत्थर बनना है कि चाहे हमारे ऊपर कितने भी कटाक्ष जो है वो कसे जाए, व्यंग मिलते रहे, लेकिन फिर भी हमने, है ना, भक्ति मार्ग को छोड़ना नहीं है, अपने स्पिरिचुअल गाइड की गाइडेंस को फॉलो करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सत्संग के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, रिव्यू सेगमेंट की तरफ। सबसे पहले हम चलते हैं बहुत ही प्यारे गोलोकियन रेणु जी के पास, चंबा। हरी हरी बोल रेणु जी। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल टॉपिक प्रेजेंट किया है हमारे नताशा जी ने, और सच में ये बहुत बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो आमतौर पर हम समाज में सुनते हैं, स्पेशली जो लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे एक तरह से होता ना कि एक आपके साथ टैग लग गया है, तो पहले तो इसे ब्लेसिंग की तरह लेना है कि जब तुम्हारा व्यवहार नहीं बदलता तो तुम भक्ति करते क्यों हो। मीन्स दूसरे अगर हमारा व्यवहार देख रहे हैं तो साथ ही साथ ये भी तो देख रहे हैं ना कि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसे ब्लेसिंग के रूप में लेंगे तो क्या होगा, अंदर से हम हताश नहीं होंगे, बल्कि हमें अंदर से खुश होना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे कबीर जी कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए जामे कुटी छपाए, बिन साबुन पानी मले मैल घुल घुल जाए। अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, तो हमारे अंदर की कमियों को वो हमें दिखा रहा है। हमें थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए कि जो बात की जा रही है क्या वो सच में ठीक है। अगर तो देखिए कई बार कुछ लोगों की आदत होती है वैसे ही लेग पुलिंग करने की, है ना, तो उसको इग्नोर करना है, वहां उलझना नहीं है। डिवोटी को जैसे एक लाइन होता है ना, शेर होता है, उसको दहाड़ मारने भी आती है, और साथ ही साथ बकरी की तरह ममियाना भी आना चाहिए। जो लोग तमोगुण से भरे हैं उनके सामने थोड़े शांत हो जाइए, मैं यही कहूंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि भेड़ बन जाइए, बकरी बन जाइए, कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अंदर से प्रभु को याद करते रहिए।
और दूसरी तरफ जब कोई हद मचा रहा है, बार 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 आपको बोल रहा है, तो एक दो बार अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने वर्ड से थोड़ा सा वहां पर बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। हमें इस रास्ते पर जजमेंट किससे लेनी है? अपने अंदर जो भी बदलाव आ रहे हैं या जो कमियां हैं, हमारे मेंटर्स अगर हमें गाइड कर रहे हैं तो उनको सच में हमें देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए और खुद का सुधार करना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे नताशा जी कह रहे थे ना कि भगवान जी के रास्ते में तालियां और गालियां भरपूर मिलेंगी, भरपूर मिलेंगी। तालियां कहाँ से मिलेंगी? जैसे भीड़ से अलग कोई कुछ करे तो उसकी एप्रिसिएशन तो होगी ही होगी, और वो एप्रिसिएशन कब होगी? वो एप्रिसिएशन होगी एक ग्रेजुअल प्रोसेस पर, धीरे 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 इस रास्ते पर जब कोई लगा रहेगा। और स्पेशली मैं तो ये कहूंगी, जैसे नताशा जी कह रहे थे ना कि बड़ा ही रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कोई ऐसा पर्सन होता है जिसकी एप्रिशिएशन उसके घर वाले करते हैं। मोस्टली क्रिटिसिज्म जो है घर से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे अपने ही काम ऐसे होते हैं जो पास्ट में हमने किए होते हैं, तो एकदम से जब हम इस रास्ते पर पढ़ते हैं, भीड़ से अलग यानी भक्ति मार्ग पे चलना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि ये क्या हो गया। तो धीरे धीरे वो हमें एज इट इज देखेंगे, अगर वो कर रहे हैं तो मींस रिस्पेक्ट भी करना शुरू करेंगे, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वहां से एप्रिसिएशन भी मिलेगी। और सबसे सबसे प्यारा फंडा, सबसे प्यारा क्राइटेरिया मैंने भी अपने जीवन में उतारा है, आप सब भी जो डिवोटीज हमारे चल रहे हैं काफी टाइम से, उन्होंने भी उतारा होगा कि प्रभु से हमें रेगुलर प्रेयर करनी है। जैसे नताशा जी कह रहे थे ना कि प्रभु अगर हमारा हाथ पकड़ के रखेंगे ना तो जो हमारे होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। हम बार बार नेगेटिविटी से घिरे रहेंगे, बार बार काम क्रोध मद लोभ ये आएगा ही आएगा, लेकिन अगर हमारे जीवा पर, हमारे हाथों में टेलीकाउंटर, मुख में हरि का नाम होगा, प्रभु की तरह एक तरह से भगवान जी हमें कस के पकड़ के रखेंगे, तो होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाएंगे। तो रेगुलर प्रेयर्स करते रहिए, और अगर प्रशंसा मिल रही है तो प्रभु जी आपकी बड़ी बड़ी कृपा, और अगर आपको निंदा मिल रही है तो आप ये अपने आप को काउंसिल कीजिए कि थैंक यू प्रभु, एटलीस्ट आपने मुझे ये मेरी कमी बताई, आप चाहते हो इस कमी को भी मैं सुधारूं और यही जन्म मैं अपना लास्ट करके जाऊं। अंत में मैं ये भी कहूंगी कि हमें रेगुलर भगवान से एक प्रेयर करनी चाहिए, जो कि मैं रेगुलर करती हूँ। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, हमें रेडी रहना है भगवान के रास्ते पे, बिरले ही लोग चल रहे हैं और बिरलों में हमारा नाम अगर आ रहा है, हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, अवगुण से भरे हैं, एज इट इज भगवान के सामने जाइए, बाकी सारा डिपार्टमेंट भगवान का है। भर भर के प्रशंसा भी मिलेगी, भर भर की निंदा भी मिलेगी, उन सबको अपनी झोली में समेटिए और आगे बढ़ते जाइए। हर मन मंदिर हर घर मंदिर, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है, तो चलिए हम नेक्स्ट डिवोटी की तरफ चलते हैं। हमारे साथ सुधा अग्रवाल जी हैं। हरी बोल, हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल। रेणु जी, आज का टॉपिक जितना सुंदर है वो उतनी ही खूबसूरती से नताशा जी ने हमें समझाया और बहुत सी लर्निंग बनी मेरी।
हरी हरी बोल सुधा जी। सुधा जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज चेक करिए जरा। हरी हरी बोल, हरी
हरी बोल, हरी हरी बोल।
सुधा जी, अपनी अपनी कॉल को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा आज आपको। हम चलिए श्रेया जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल श्रेया जी, हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, नताशा जी ने इतने प्यारे एग्जाम्पल से इतने जोश के साथ हमें एक्सप्लेन किया कि कैसे हम सबको लगता है कि लाइक हमारा, हम सबको पीछे से कमेंट्स आते हैं, क्रिटिसिज्म मिलता है कि हमारा व्यवहार नहीं अच्छा, तो हम जो है भक्ति, हमारा भक्ति करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब हम सब, जैसे नताशा जी ने बताया कि सभी पहले से ही इमेजिनेशन करके बैठे होते हैं कि लाइक हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं तो हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, हम कोई गलती से भी गलती नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं कर सकते। इवन हमारे घर वाले अगर छोटी छोटी सी भी हम कोई वो कर दे, छोटा सा भी कोई गुस्सा कर दे या छोटा सा कोई गलत ले ले, तो बड़ा मतलब आगे से कमेंट आ जाता है कि आप तो बड़ी भक्ति कर रहे थे, आप तो बड़ा वो कर रहे थे, बट आपकी हरकतें तो ऐसी हैं, फिर ऐसी भक्ति का क्या फायदा, छोड़ दो पूजा पाठ, छोड़ो इस, अच्छा बुरे काम ही कर लो, है ना। मतलब डबल फेस की रहना, मतलब सभी ऐसा सोचते हैं। बट जैसे आज नताशा जी ने और रेणु जी ने, शमी जी ने इतने प्यारी तरह हमें एक्सप्लेन किया कि हमें जो है, हमें छोटे छोटे क्रिटिसिज्म से डरना नहीं है, और हमें ये भी समझना है कि एकदम से कोई परफेक्ट नहीं होता। जैसे बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में तो नर्सरी क्लास में एडमिशन लेता है, धीरे 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 सीखता है, अगर और सीधे अचानक से वो, अगर आपने स्कूल में एडमिशन करवा लिए तो वो एग्जाम देके अचानक से पास नहीं हो सकता या अचानक से वो पीएचडी नहीं कर सकता। धीरे 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 लाइफ के स्टेजेस होते हैं, हर चीज में स्टेजेस आते हैं, कोई भी चीज में परफेक्शन के लिए हमें टाइम लगता है। लाइक अब अगर हम स्कूटी चलाना ही सीख रहे हैं या फिर अगर हम कोई स्किल सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं लाइफ में, उसमें टाइम चाहिए। वैसे ही भक्ति में भी हमें टाइम देना है, खुद को टाइम देना है और दूसरों को भी टाइम देना है, ताकि जैसे हमें बताया कि पहले लोग एक्सेप्ट करते हैं, पहले लोग क्रिटिसाइज करते हैं, धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं, फिर रिस्पेक्ट करते हैं, फिर फॉलो करते हैं, तो सब होगा, बट हमें टाइम, हमें टाइम देना है खुद को भी और दूसरों को भी। और इन केस हमें क्रिटिसिज्म मिल भी रहा है तो हमें उसको बड़ा पॉजिटिव लेना है। जैसे हमें बताया जाता है कि लाइक हमें जो है अपनी नेगेटिव क्वालिटीज दिखती नहीं है, हमें नहीं दिखता कि हमें गुस्सा है, ईगो है, बट बड़ा म्यूट सब में होता ही होता है ना, पर वो कैसे दिखेगा जब लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे। तभी जैसे रेणु जी ने बताया कि निंदक नेड़े रखिए, मतलब निंदक को हमें अपने पास रखना है, उससे क्या होगा जब वो हमें क्रिटिसाइज करेंगे तो हमें धीरे धीरे जो अपनी गलतियां हमें नहीं दिख रही ड्यू टू ईगो या कोई भी इशू, अपनी गलतियां नहीं दिख रही, वो हमें क्या हो जाएगा, दिखनी शुरू हो जाएंगे अचानक से। हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हमें जो है क्रिटिसिज्म का फायदा उठाना है, उससे डर कर, उससे भाग कर खुद पीछे नहीं हटना। जैसे भैया एग्जाम्पल देते हैं बड़े अच्छे की, पहले जब हम भक्ति मार्ग में जाते हैं ना, जैसे हम सीड होते हैं, जैसे एक सीड को हम मिट्टी में लगाते हैं, धीरे धीरे वो छोटा सा प्लांट बनता है, तब उसको क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए होती है अपने आसपास। फिर जब वो धीरे 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 बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, फिर उसको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए होती। बट जब वो शुरू शुरू में हम लगाते हैं तो उसको छोटा सा होता है तो उसे प्रोटेक्शन चाहिए। वैसे ही हम जब भक्ति मार्ग में आते हैं, हम एक प्लांट की तरह आते हैं छोटे से, हमें क्या चाहिए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, खुद को हमें प्रोटेक्ट रखना है। हमें पता है कि छोटी सी आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगा या थोड़ा सा ज्यादा पानी होगा तो पेड़ पौधा जो है छोटा सा वो खराब हो सकता है। वैसे ही हम नींबू जो है एक प्लांट की तरह है, थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म, थोड़ी सी भी बुराई, थोड़ी सी भी टोन जो है वो हमें गिरा सकती है भक्ति मार्ग से, क्योंकि ये माया के अटैक है, माया नहीं चाहती कि हम भगवान के पास जाएं, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें उन चीजों से बचना है, हमें समझना है कि हम अभी प्लांट है छोटे से, हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है भगवान की शील्ड से। जितना लोग हमें क्रिटिसाइज करें उतना हमें डिवोशन करनी है, उतनी हमें चैंटिंग करनी है, उतना उसको पॉजिटिवली लेना है, फिर ही हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉर सम टाइम। एंड आफ्टर दैट क्या होगा, धीरे 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 जब हमारी भक्ति स्ट्रांग हो जाएगी, जब हम पेड़ बन जाएंगे, फिर जो है फिर लोग हमें फॉलो करना शुरू कर देंगे, फिर जो है फिर हमें लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। तभी हम अपने बिहेवियर में मतलब खुद को अच्छे से बदल सकते हैं और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। बट ये याद रखना है क्रिटिसिज्म मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि माया नहीं चाहती कि हम भगवान के पास जाएं, वो बहुत कोशिश करेगी, बहुत ज्यादा कोशिश करेगी हमें भटकाने की, बट हमें नहीं भटकना, हमें खुद को स्ट्रोंग रखना है और हर क्रिटिसिज्म को फेस करने के लिए तैयार रहना है और उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी निकालते रहना है। तो मेरी तरफ से इतना ही, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, ब्यूटीफुल लर्निंग श्रेया जी। जैसा आप कह रहे हैं माया देवी, ये माया देवी भी किस रूप में आती है, ये विभिन्न क्रिटिक्स से रूप में आती है जो हमें ही हमारी चेकिंग करने पर मजबूर करती है। देखिए, अगर ये निंदा करने वाले नहीं होंगे, क्रिटिसाइज करने वाले नहीं होंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कितना ग्रो किया और कितना नहीं। और कभी कभी तो फेलियर भी मिलेगा कि हम गुस्से में भी उलझ जाएंगे, हमारे व्यवहार में सच में हमें लगेगा कि सच में हम इतनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अभी तक कोई बदलाव नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि भगवान हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं, ये जो क्रिटिसिज्म दे रहे हैं ना हमें, या जो हमारी लेग पुलिंग कर रहे हैं, भगवान जी चाहते हैं कि बेटा मैं जैसे घड़े को बजा बजा के देखते हैं ना कुम्हार कि वो पका है या नहीं पका, उसी तरह भगवान जी भी हमें चेक करवाना चाहते हैं। और किसके माध्यम से? इन्हीं आलोचना करने वालों के माध्यम से। तो इनका भी बड़ा बड़ा आभार करना चाहिए, ये एक तरह से हमारे जीवन में बड़ा ही प्यारा अहम पहलू निभा रहे होते हैं। थैंक यू सो मच श्रेया जी वंस अगेन। हरी हरी बोल। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, भजन सेगमेंट, जो आज हमें गीता जी चंबा से सुनाने वाली हैं। हरी बोल, हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा। जब तुम्हारा व्यवहार ही नहीं बदलता तो ऐसी भक्ति को करने का क्या फायदा है। तो नताशा जी ने बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन जो है वो दी है, और वाकई मैं अगर अपना बोलना चाहूं तो जब मैंने भी इस डिवोशन के मार्ग को पकड़ा तो डिवोशन के मार्ग पर शुरू शुरू में मुझे भी जो है वो बड़ा ज्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म मिला, क्योंकि हर इंसान का जो व्यवहार होता है ना वो हमें हमारे जो हमने पिछले जन्मों में कार्मिक अकाउंट किए होते हैं उसी के अनुसार जो है वो मिलता है। तो उसमें जो है वो हम इस संसार में आते हैं तो भगवान हमें शुद्ध होने के लिए भेजते हैं, लेकिन हम जो है वो भगवान को जो है वो भूल बैठते हैं और इस माया के जाल में जो है वो फंस जाते हैं। तो जैसे कि आज 9th chapter के जो है श्लोकों के माध्यम से भी जो है वो यही हमें बताया गया है कि चाहे क्रिटिसिज्म मिले चाहे कुछ भी हो, हमें जो है वो सदैव अपने मन को जो है वो भगवान की जो है वो शरण में लगाना है और भगवान का ही जो है वो भक्त बनना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी प्रार्थना को जो है वो हम इस भजन के माध्यम से जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें ऐसी शक्ति दे कि हमारे व्यवहार जो है वो जिसमें भी इतनी बुराइयां है वो धीरे धीरे हम जब आप इस डिवोशन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें परिवर्तन आए, इस धैर्य के साथ, निश्चय के साथ, जोश के साथ जो है वो इस भक्ति के रास्ते पर जो है वो आगे बढ़ना है, जो कि निखिल भैया और नितिन भैया ने और हमारे सीनियर गुरु मेंटर्स ने जो है वो हमें बताया है कि कुछ भी हो जाए इस मार्ग से जो है वो हमें हटना नहीं है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो, दर्शन दो, ओ मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो, दर्शन दो, ओ मुझे और न तड़पाओ, ओ दर्शन दो, दर्शन दो, ओ मेरे बांके बिहारी जी, ओ दर्शन दो, दर्शन दो, मेरे मन के द्वार खुले तेरे मंदिर में आकर, मेरी किस्मत खुल गई है तेरे नाम को पा करके, ओ मेरे गिरिवर धारी जी, ओ दर्शन दो, दर्शन दो, ओ मेरे बांके बिहारी जी, ओ दर्शन दो, दर्शन दो। मैं जन्मों की प्यासी हूँ तेरे द्वारे आई हूँ,
बना लो दर्शन दो दर्शन दो ओ मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो दर्शन दो मैं विरहा की मारी सुनो मेरे गिरधारी मैं विरहा की मारी सुनो मेरे गिरधारी और तूने सबको तारा है अब आई मेरी बारी और मेरे भावों को अपना लो दर्शन दो दर्शन दो ओ मेरे भावों को अपना लो दर्शन दो दर्शन दो ओ मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो दर्शन दो मुझे आर न तड़पाओ दर्शन दो कर दो दया मोहन हम तेरे सहारे प्यासे हैं ये नैन हमारे हैं वो दर्शन के प्यासे हैं ये नैन हमारे हैं ओ मेरे इस जीवन को जीवन दो जीवन दो ओ मेरे इस जीवन को जीवन दो ओ मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे ओ मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो ओ मुझे और ना तड़पाओ दर्शन दो ना शास्त्र पर ना शास्त्र पर ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर हरी हरि बोल हरी हरि बोल
हरी हरि बोल हरी हरि बोल गीता जी आपके बहुत सुंदर भाव और बहुत सुंदर भाव से आपने जो आज भजन शेयर किया है सबको बहुत आनंद आया थैंक यू फॉर सच अ मेलोडियस भजन अंत में हम सबको थैंक्स करना चाहेंगे ऑल व्यूअर्स का जिन्होंने समय बनाया और इतने सुंदर तरीके से आज के जो टॉपिक को ग्रहण किया। आई होप आप इस लर्निंग्स को अपने जीवन में लेंगे और आपके जीवन में बदलाव आएगा और कभी भी आप क्रिटिसिज्म से डरेंगे नहीं। मैं नितिका जी का थैंक्स करना चाहूंगी बहुत सुंदर रीडिंग की, शमी जी का सुंदर होस्टिंग की, रीनू जी का बहुत सुंदर व्यूज दिए, श्रेया जी का बहुत ही अति सुंदर आपने व्यूज दिए, और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल टीम का जितने इतने सुंदर प्रयास किए और हम इस सुंदर जो एक वार्तल आपका जो है वो हम माध्यम उनकी हेल्प से हम बने हैं। तो थैंक यू ऑल टेक्निकल टीम। अब जो हम चलते हैं नेक्स्ट जो सेगमेंट में, एक छोटी सी झलक भी हम बाद में देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज भगवद गीता। तो हम बहुत ही कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, अब हमारे मिसकंसेप्शन जो है वो दूर होने के बाद हम व्हाट इज भगवद गीता का अध्ययन करेंगे और जो कि हमारे सीनियर मेंटोर है नीलम जी वो हमें समझाएंगे और बताएंगे कि व्हाट इज भगवद गीता। इट्स अ वेरी डिवाइन टॉपिक, आप जरूर नेक्स्ट सेक्शन सुनिए कल 5:30 IST टाइम, इंडियन टाइम 5:30 को हम दोबारा मिलेंगे यहीं पर और इस व्हाट इज भगवद गीता का आनंद लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, ब्रीथ इन द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल।
गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस info@golokexpress.org द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर 7018026821 से भी जुड़ सकते हैं। आप हमसे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरी हरी बोल।